भगवान की श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो आप सबका स्वागत है भारत विकास परिषद या सोसाइटी
परिषद
भारत विकास परिषद के सदस्यों का श्रीमान मदन लाल जी के निवास स्थान पे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ पूरे विश्व में भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति सनातन वैदिक साहित्य के माध्यम से प्रचार कर रही है उसके बिहाफ पे आप सबका हम स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के वृंदावन केंद्र से आपकी सेवा के लिए उपस्थित ये दास हुआ है और हमारे साथ बैठे हुए हमारे साथी अमरीश हरि प्रभु आपके निकट हरियाणा
बहादुरगढ़
नजबगढ़ और बहादुरगढ़ विशेष रूप से उस केंद्र से अपने भक्त मंडली के साथ आए हैं। तो हमको थोड़ा समय में विलंब हो गया, हमको टाइम से आना था एक और प्रोग्राम में जहां हम आए हुए हैं, वहां से आने में आपको थोड़ा कष्ट हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा की प्रार्थना है कि हमको 8 बजे का कहा था 8 बजे आना था, आपको शायद किसी को इंतजार करना पड़ा हो। अधिक समय न लेकर हम 15-20 मिनट में भगवद गीता के माध्यम से चर्चा करेंगे। अपना बच्चा रोता है पहचान लो तो भगवद गीता के सत्संग शुरू करने से पहले हम विनती करते हैं कि हाथ जोड़ के जरा लंबा सांस लेके भगवान के नाम लेने के लिए एक अभ्यास करें ताकि मन एकाग्र हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय।
देवकी नंदनाय च।
देवकी नंदनाय च।
नंद गोप कुमाराय।
नंद गोप कुमाराय।
गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य।
जय श्री कृष्ण चैतन्य।
प्रभो नित्यानंद।
प्रभो नित्यानंद।
श्री अद्वैत गदाधर।
श्री अद्वैत गदाधर।
श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद।
श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम।
हरे राम हरे राम।
राम राम हरे हरे।
राम राम हरे हरे हरे।
तो भगवत गीता भगवान का गीत, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसी स्थिति में दिया था जब अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म करने में असमर्थ अपने आप को समझ रहा था। अपने कर्तव्य कर्म करने में जब असमर्थ समझ रहा था अर्जुन, उस वक्त भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवत गीता की ज्ञान प्राप्त करने से हम अपने कर्तव्य कर्म को समर्थ बन के और परिपूर्णता के साथ कर सकते हैं। काम करने की जो हमारी क्षमता है वो दुर्बल जब हो जाती है तो हमको गीता के ज्ञान की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने कर्तव्य को बड़ी कुशलता से पूर्ण कर सके। अपने काम को जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, जितनी हमारे अंदर शक्ति है, जितनी हमारे अंदर सलाहियत है, उस सलाहियत का निखार करने के लिए, उस सलाहियत को बाहर निकालने के लिए भगवद गीता की शिक्षा अति आवश्यक है। तो भारत विकास का मतलब भारत का विकास करना, ऐसे आपके अंदर जो शक्ति है उसका विकास करने के लिए भगवद गीता की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। जितना पोटेंशियल आप में है, जितनी शक्ति आप में है, वो सारी शक्ति बाहर कैसे निकले, आप कैसे पर उपकार के लिए बाहर निकल के लिए काम करो, शक्ति के साथ दूसरे के उधार करने की भावना आपके मन में आए और अपना कल्याण करने की भी सोच पैदा हो, तो ये उद्देश्य भगवद गीता की शिक्षा का है। कहां से ये शक्ति आती है, भगवद गीता ये शक्ति कहां से देती है, भगवद गीता का ज्ञान कौन से स्तर के ऊपर काम करता है। संसार का ज्ञान काम करता है शरीर के स्तर के ऊपर, तो इस शरीर के द्वारा हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं। शरीर में तो सलाहियत इतनी होती है, इतनी शक्ति होती है शरीर में कि आदमी 8-10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन भगवत गीता काम करती है आत्मा के स्तर के ऊपर। कौन सा बल बढ़ाती है, आत्मा का बल बढ़ाती है। बल आता कहां से शरीर में, आत्मा से बल आता है। आध्यात्मिक बल जो है, भगवत गीता आध्यात्मिक बल के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देती है। आध्यात्मिक बल जब बढ़ जाता है तो आदमी वीर पुरुष बनता है और धीर भी बनता है। केवल वीर नहीं बनता है, धीर बनता है। आपको आश्चर्य लगेगा भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, जहां से भगवत गीता शुरू होती है, भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। जैसे कपड़े पुराने बदल के आदमी नया पहनता है, ऐसे शरीर छोड़ता है। ये सुनने के बाद तो ये बात करनी चाहिए अर्जुन को, अभी क्या करना है संसार में, भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन भगवान ने एकदम गीता में मोड़ दिया, दूसरे अध्याय में जाते जाते 30, 31, 32, 34 श्लोक में, अरे अर्जुन इसलिए तुम क्षत्रिय हो, अपने युद्ध करने का काम करो, तुम आर्य हो, आर्य हो के तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम अपने कर्तव्य कर्म को कैसे छोड़ सकते हो। कमाल कर दिया, कहां आध्यात्मिकता की बात करते हुए कर्तव्य कर्म के ऊपर कैसे लाए, एक मिनट, क्या जरूरत थी भगवद गीता में इस अर्जुन को कहने की कि तुम अपना युद्ध करो, तुम अपना कर्तव्य कर्म पूरा करो, तुम ये नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। कितना बड़ा दूसरे अध्याय के अंदर इतना बड़ा बहुत बड़ा एक डाइवर्शन है, एकदम 100% यू टर्न है, पूरा यू टर्न भगवान ने लिया। आत्मा का ज्ञान देते देते, आत्मा अमर है, आत्मा कभी अविनाशी होती है, क्या मरेगा कोई, किसके मरने के ऊपर किस बात का दुख करना, ये करते हुए एकदम कहते, नहीं अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे को तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अरे क्षत्रियों को तो ऐसा मौका मुश्किल से मिलता है, रणभूमि के अंदर क्षत्रिय को कोई बुलाए और तलवार उठा के जाना पड़े और सिर किसी को काटना पड़े या अपना भी कटवा देना पड़े, ये भी एक धर्म का यज्ञ है। बड़ी कितनी बड़ी बात, एकदम इतना यू टर्न भगवान ने क्यों लिया, क्योंकि भगवद गीता का उद्देश्य हमको कर्तव्य निष्ठ करना है, हमारे काम को ठीक तरह से कराने का उद्देश्य है। कायर बनाने का उद्देश्य नहीं है भगवद गीता, घर में बैठने का उद्देश्य नहीं है, जंगल में जाके बैठने का उद्देश्य नहीं है, घंट घड़ियाल बजाने का उद्देश्य नहीं है। ये तो बहुत बड़ी क्रांति है भगवद गीता में, जो ज्ञान अरण्य ज्ञान कहते हैं इसको। अरण्य का मतलब यह है वन, अरण्य का ज्ञान बोला जाता है भगवद गीता या उपनिषद के ज्ञान को, वेद के ज्ञान को अरण्य का ज्ञान बोलते हैं। अरण्य का मतलब जहां रण न हो, जहां शांति हो, अरण्य कहते हैं वन को। अरण्य कांड है रामायण में, वनवास में जब भगवान थे। अरे भगवान कृष्ण की क्रांति यह है कि अरण्य के ज्ञान को रणभूमि में दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं, रणभूमि में दे रहे हैं। अरण्य को रणभूमि में देना, जहां युद्ध के बीच में गीता के ज्ञान को देने का आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए चलेगा। मच्छर थोड़े घूम रहे हैं, आने दीजिए बेचारों को। वो भी गीता सुनने का उनके मन में आ गया होगा, आत्मा तो उसके अंदर भी है ना छोटी, लेकिन उनको मजा आएगा खून पीने में। आत्मा है फिर भी, लेकिन उसका काम ही है, क्या करेगा बेचारा। तो बात ये कर रहे थे कि भगवत गीता बहुत बड़ी क्रांति है शास्त्रों में। भगवान ही तो शास्त्र देते हैं, भगवान ने ही बहुत बड़ी क्रांति की है कि अरण्य का ज्ञान रण के अंदर दिया और रण के अंदर भी कर्तव्य का ज्ञान दिया। नहीं तो पहले भगवान ने गीता का ज्ञान जब नहीं दिया था, उससे पहले दो ज्ञान तो हमेशा से पहले प्रचलित हैं। क्या ज्ञान है? एक को कहते हैं प्रवृत्ति ज्ञान, एक को कहते हैं निवृत्ति ज्ञान। निवृत्ति ज्ञान सन्यासियों का होता है, संसार से कुछ लेना नहीं है, चलो एक तरफ बैठो, जंगल जंगल में तपस्या करेंगे। और प्रवृत्ति ज्ञान गृहस्थियों का होता है, संसार में भी रहेंगे, काम भी करेंगे और भगवान का भजन भी करेंगे। तो ये दो ज्ञान तो पहले था। भगवान को भगवत गीता देने की जरूरत क्या है? भगवान ने बीच का ज्ञान दिया, उसका नाम है भक्ति ज्ञान, भागवत ज्ञान, भागवत मार्ग दिया। न निवृत्ति घर छोड़ने की जरूरत है और न ही बिल्कुल चपक के पागल बनने की जरूरत है। आपको ऐसा बहुत बीच का सरल रास्ता बताता हूं जिसमें मुझे प्राप्त करने में आपको न घर छोड़ना पड़ेगा, न दुकान छोड़ना पड़ेगा, न मकान छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कर्तव्य कर्म करते हुए मुझे प्राप्त कैसे कर सकते हो? भक्ति का विशेष ग्रंथ है भगवत गीता। ये ग्रंथ ही भगवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है। भक्ति प्रधान, भक्ति होती है तो प्रेम होता है। भक्ति की परिभाषा ही प्रेम है। भक्त किसको बोलते हैं? वे जो प्रेम करें। ये बाबा ये कहते हैं ये पित्र, ये मातृ भक्त है, ये माँ का भक्त है, माँ से प्रेम करता है। ये पितृ भक्त है, ये देश भक्त है। तो ये जो परिभाषा जो भक्त की है उसका 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 उसके अंदर जो है प्रेम है। तो एक प्रेम करने वाला होता है, एक किसी से प्रेम करता है। देश भक्त देश से प्रेम करता है, मातृ भक्त माता से प्रेम करता है, पितृ भक्त पितृ से प्रेम करता है, गुरु भक्त गुरु से प्रेम करता है। लेकिन भक्त शब्द जब अकेला होता है तो भगवान से प्रेम करने की बात होती है। भग शब्द भगवान के भजन करने के लिए। तो प्रेम की परिभाषा है भगवत गीता, प्रेम की परिभाषा है। और आपने देखा है प्रेम से आदमी कितना काम कर सकता है। नौकर आप रखेंगे ना कोई काम करने का, ऑफिस में 8 घंटे काम करेंगे, लेकिन प्रेम से अपने घर में शादी है तो 18 घंटे काम करने में कोई नहीं थकता है। दिन रात जागते हैं, नहीं खाते हैं तब भी काम करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? क्यों? प्रेम है। प्रेम में काम करने की सलाहियत बढ़ती है, कर्तव्य पालन करने में आदमी को सुख मिलता है। और नौकरी करने में परेशानी होती है, 8 घंटे कब पूरे होंगे तब जान छूटेगी, उसके सोच में बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। भगवत गीता की शिक्षा काम कराएगी, जिससे प्रेम से काम करोगे तो आनंद मिलेगा, वो काम ही आनंद देगा। माता बच्चे को साफ करने का काम करती है, उसको खिलाती है पिलाती है तो उसको सुख मिलता है, वो बोझ नहीं समझती। बच्चे को मां पालती है बोझ समझती है क्या? गुरु शिष्य को शिक्षा देता है बोझ समझता है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें उनको सुख मिलता है। तो आध्यात्मिक बल बढ़ाने के लिए भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। और ये आध्यात्मिक बल ऐसा, और ये जहां मोड़ खाया, यू टर्न भगवान ने खाया, कर्तव्य कर्म करने के बाद एकदम कहां करते हैं दूसरे अध्याय में? अब बुद्धि की बात बता रहा हूं अर्जुन आपको, बुद्धि योग आपको बता रहा हूं कि बुद्धि योग क्या है। बुद्धि योग क्यों बताया? यहां आकर एकदम आत्मा का ज्ञान देके फिर कर्तव्य की बात, फिर बुद्धि की बात क्यों करते? आत्मा की शक्ति से कर्तव्य को परिपूर्ण रूप से करो, लेकिन बुद्धि का उपयोग करो। लेकिन कौन सी बुद्धि? बुद्धि योग। बुद्धि योग दुनिया में नहीं मिलेगा, बुद्धि योग बाजार में नहीं मिलता है, किताबों में नहीं मिलेगा। कौन देगा? भगवत गीता में भगवान 10वें अध्याय में कहेंगे ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग में देता हूं। कब देते हो? कोई पूछे तो कब देते हो? भजताम प्रीति पूर्वकम, जब प्रेम से कोई मेरा भजन करता है तो मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। कम बुद्धि योग भगवान दे तो, जब मेरा प्रेम से भजन करता है। बोला आपका प्रेम से भजन क्यों करे? भगवान कहे क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं कब से आपसे प्रेम करता आ रहा हूं, आपका कभी मैंने साथ छोड़ा है? अरे आपके सबके हृदय में कब से मैं विराजमान बैठा हुआ हूं, आपका मार्गदर्शन करता हूं, उपदृष्टा अनुमंता आपका सखा हूं, आपका दोस्त हूं, आपका मित्र हूं, आपका साथी हूं, आपका संबंधी हूं, आपका पालन पोषण कब से कर रहा हूं? अरे कौन आपका मित्र है इस दुनिया में, कभी आपने विचार किया है? किस चीज के ऊपर हम सब जीते हैं? कौन सी चीज हमारे लिए जीने को बहुत आवश्यक है? दिन रात में कौन सी चीजें जो न मिले तो हम जी भी नहीं पाएंगे? सांस लेने के लिए हमारे को दवा किसने दी है? किसी गवर्नमेंट की है, किसी सरकार की है, किसी फैक्ट्री से मिलती है, पैसों से लाते हैं? नहीं, मुफ्त की है।
دو منٹ سانس لینے کے بغیر نہیں جی سکتے ہیں, اور مفت کی سب کے لیے ہے, چور کے لیے بھی ہے تو ساز کے لیے بھی ہے. ارے پریم کرتا ہے اس لیے دیے نا, اس پریم کرتا ہے اس لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ مفت میں سب کو دی ہے, کوئی ایک پیسہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں رکھا ہوا ہے. کبھی وچار کیا ہے کہ اس بھگوان کے پرکرتی کے اندر, اس ہوا کے اوپر, اس سانس لینے کے لیے جو آپ کو مل رہی ہے, اس کے اوپر کسی کا ادھیکار نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر مالکی نہیں بنا سکتا, سب کے لیے مفت میں دے دیے. ہم اس کو بہت پردوشت کر رہے ہیں. بھولیے گا مت, ایک زمانہ آنے والا ہے, ہم اپنے جیون میں دیکھیں گے کہ سانس لینے میں اتنی دقت ہوگی, جگہ جگہ آکسیجن پارل لگے ہوں گے. کیا یہ ایک گھنٹہ لمبا لمبا سانس لیجئے اور سارا دن سکھی گزاری اور آپ کو 500 روپیہ لگیں گے؟ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ بوتل میں پانی ملے گا اور ہم 10 روپے کا لیں گے؟ کبھی سوچا تھا آپ لوگوں نے؟ دودھ 10 روپے کلو ہوتا تھا, مہنگا مانتے تھے, بھائی بہت مہنگا دے رہا ہے. 10 روپے کا پانی ہر ایک آدمی ایسے پھٹاک سے لے رہا ہے. کبھی سوچا تھا کہ 10 روپے کا ایک ہم کلو پانی لے کے پیئیں گے؟ سوچا تھا کبھی؟ لے رہے ہو کہ نہیں رہے ہو؟ ایسے سانس لینے کے لیے ایک گھنٹہ لمبے سانس لو, پورا دن سکھی گزارو, 500 روپے دو. کہتے نا ہم نے گڑبڑ کر دیا ہے, بہت بڑی ایجنسی کھل. تو یہ چیز جو مفت کی ہمارے کو ملی ہوئی ہے, بھگوان کے پریم کرتے ہیں اس لیے دیا ہے نا. ہم پوچھتے ہیں کبھی دوسری کیا چیز بہت ضروری ہے آپ کو سنسار میں جینے کے لیے؟ پانی چاہیے نا, اور دھرتی کے اوپر 3 حصہ پانی ہے, 1 حصہ دھرتی ہے, اور سمندر کا سارا کھارا پانی کوئی نہیں پی سکتا ہے. 10 دن پہلے ہم دبئی میں تھے, وہاں میرے خیال میں نہیں تو بھی اربوں روپیے خرچ کرتے ہیں سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کے اور لوگوں کو پلانے کے لیے. بڑی پلانٹ لگے ہوئے ہیں, انجینئر لگے ہوئے ہیں کہ کھارے پانی کو میٹھا کرے, اور جب میٹھا کرتے ہیں, وہ انجینئر مجھے بتا رہا تھا, تو پھر اس کے اندر کیمیکل بہت کم ہو جاتے ہیں, پھر ہم سمندر کا پانی اس میں مکس کرتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ کام آ جائے. تو اربوں روپے خرچ کرتے ہیں صرف پانی کو میٹھا کرنے کے لیے, سمندر کے کھارے کو. لیکن کبھی وچار کیا ہے کہ سارے سنسار کو تو ایسے نہیں پلا سکتے ہیں نا, لیکن اسی سمندر کا پانی سورج کے پرکاش سے, اتنی تپت سے آکاش میں جا کے بادل بن جاتا ہے, وہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. نہ کوئی ٹیوب ہے, نہ کوئی پمپ ہے, اتنا سارا پانی اوپر جاتا ہے, نہ کوئی بجلی کا خرچہ ہے, نہ کسی آدمی کا اس کے اوپر پریشانی اٹھانی پڑتی ہے, نہ پمپ مین رکھنا پڑتا ہے. ایک چھوٹی ٹانکی آپ نے بلڈنگ میں رکھتے ہو تو کوئی پلیٹ فارم بناؤ 500 لیٹر کی ٹانکی کے لیے, لیکن یہ 20,000 ہاتھیوں کے وزن جتنا بڑا ایک آکاش کے اوپر بادل گھوم رہا, کسی کے اوپر گرتا نہیں ہے. کبھی وچار کیا ہے کہ میٹھا پانی کیسے اوپر بنا کے بھیج دیا کھارے کو, اور سنسار کے اوپر اتنا برسا رہا ہے کہ ہر ایک آدمی منرل واٹر مفت میں پیے, یہ ندیاں بہ رہی. کبھی وچار کیا ہے, کبھی اس کے اوپر سوچا ہے؟ کھانے کے لیے, سانس لینے کے لیے ہوا مفت میں دی کیونکہ پریم کرتا ہے, کھارے پانی کو میٹھا بنا کے بھیج رہا ہے سمے سمے کے اوپر, اور یہ دھرتی کے اندر بھی وہی پانی جاتا ہے تب اندر سے ہم نکالتے ہیں کیونکہ پریم کرتا ہے. تیسری کیا چیز ضروری ہے ہمارے کو جینے کے لیے؟ کھانا چاہیے, روٹی چاہیے, روٹی چاہیے, ان چاہیے. اور دنیا کے اندر کوئی ایک ایسی فیکٹری سائنس نے آج تک نہیں بنائی ہے کہ ایک دانہ چاول کا بن سکے, ایک دالا گیہوں کا نہیں بن سکتا کسی فیکٹری میں, گندم نہیں بن سکتی, گیہوں نہیں بن سکتا, دال نہیں بن سکتی, دھرتی کے اندر سے اپجے گی. کوئی فیکٹری نہیں ہے دنیا کے اندر, کہیں کسی دنیا کے سائنس نے وکاس نہیں کیا ہے کہ ایک دانہ چاول کا بنا پائے. اناد بھوتی بھوتانی پرجناد ان سمبھو, بھگوت گیتا لکھتی ہے اناد بھوتی بھوتانی, سب پرانی ان کے اوپر جیتے ہیں, اور ان برسا سے ہوتا ہے, اور یہ پرتھوی سے ان پیدا ہوتا ہے, پرتھوی سے ان پیدا ہوتا ہے. ایک دانہ ڈالو 3 مہینے کے بعد, 1000 دانے ایک دانے کے لو, کتنا ریٹرن بڑا ہے, کتنا بڑا ریٹرن ہے, سوچا ہے؟ اتنا ریٹرن تو کوئی بینک کبھی نہیں کسی کو دیتی. کبھی وچار کر کے دیکھنا چاہیے کہ کتنی بڑی سگمتا سے وہ چیزیں ہم کو مل رہی ہیں, جو چیزیں جن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے, اور وہ سب چیزیں ہمارے کو مفت میں دی ہوئی ہیں, پریکٹیکلی مفت میں ہیں. سونے جتنا بھاو ان کا ہوتا تو کوئی کھا سکتا کیا؟ پربھو غریب نواز ہے بھگوان, سونے کو مہنگا کیا اور اناج کو سستا کیا. ایک کوی نے کہہ رہا تھا, ایک کوی کہ آنے والی پیڑھی کا کیا حال ہوگا, کہ دانا گن کر دال ملے گی, گیہوں کی تو چال ملے گی, پانی کے ملیں گے انجیکشن آنے والی پیڑھی کو. ابھی کلو ایک دال مانگ لیتے ہو نا, پھر بولیں کتنے دانے دال چاہیے, 15 دانے کے 25 دانے لوگے, गेहूं की छाल वो भूसा मिलेगा जो गाय को देते हैं, मिलेगा ये अनाज भाई पैदा ही नहीं कर रहा है, जमीन बेकार पड़ी है कोई, सब सब कहते नहीं हम जाएंगे फैक्ट्री में जाके काम करेंगे, वहां से 200 रुपया 2000 रुपया महीने का मिल जाता है, खा के सो जाते हैं। अरे नहीं पका वो नहीं तो जमीन से उगाओगे नहीं तो खाओगे कहां से, नट बोल्ट खाओगे क्या, ये फैक्ट्रियों के पीछे तो पड़े हुए खाओगे क्या। अरे हमारी प्रगति हम जिसको कहते हैं वो कहते हैं बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए, इंडस्ट्री आने के बाद तो नट बोल्ट पैदा हुए, अन्न कहां से आ रहा है, अन्न महंगा होता जाता है क्योंकि ऊपर जमीन बहुत खाली पड़ी है, उपजाऊ जमीन पड़ी है लेकिन काम नहीं होता है। 3 महीने मजदूरी करो और 12 महीने खाओ ऐसा सूखा, सूखा कहीं इतना सूखा हमने आंखों से देखा है, हमारे बड़े बुजुर्ग 3 महीने बरसात के, सिर्फ 3 महीने बरसात के खेती करते थे, 12 महीने बैठ के खाते थे, इतना होता था कि आराम से खा सकते थे, कोई परेशानी नहीं थी, हर घर में अपनी गाय होती थी, अपने गाय का दूध पियो, अपना अन्न खाओ और बड़ा सुखी रहो, अपना फल खाओ ताजा ताजा, ऐसा ताजा ऐसे जाके ऐसे काट के लाते थे, उसको काटते थे उसी को बना के उसी को खाते थे। अब कब का खाना है हमको मालूम नहीं, कब ये काटा था, इस साल का है कि अगले साल का, स्टोरेज का ये भी मालूम नहीं पड़ता है। तो बात ये कर रहे थे कि भगवान हमसे प्रेम करता है इसलिए उसने हमारी जरूरत की सब चीजें दे दी और हमसे वापसी में चाहता क्या है कि हम वापस प्रेम करें। प्रेम आदान प्रदान प्रेम का भक्ति कहलाता है और प्रेम से जब हम काम करते हैं तो काम की हमारी सलायत बढ़ जाती है, काम की हमारी शक्ति बढ़ जाती है, काम करने का हमारी शैली बढ़ जाती है, काम करने में हमको सुख और आनंद मिलता है। तो भगवत गीता इतना बल बढ़ाती है, आपको कभी अनुभव करना हो, उस स्वतंत्रता सेनानी किस जमाने में एक सखर सिंध में हुआ था, 16 साल का नौजवान हेमू कलानी नाम था, वो रेल की पटड़ी उड़ाती थी, फिश प्लेट जो जा रही थी बारूद उठा के अंग्रेज की रेल, उसको फांसी की सजा देने के लिए बोला तुम्हारे को फांसी की सजा दी जाएगी, तब बोलता तुम किसको मारोगे, आत्मा तुमसे मरेगी नहीं, शरीर को मारे हो दे दो फांसी, मैं कई बार जन्म लूंगा, जब तक तुम्हारे को देश से नहीं निकालूंगा तब तक आता रहूंगा। कहां से इतना बल आया उस छोटे बच्चे को, कहां किसने इतना उसको बल दिया, उसको भय नहीं हो रहा था, निर्भय होके अपने कर्तव्य कर्म में लगा हुआ था। ये तो बहुत पुरानी बात होगी, आत्मा के बल की शक्ति कितनी है, शरीर काम नहीं करता है तब आत्मा कितना बड़ा काम करती है, चमत्कार की बात है ये, बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, पता नहीं आप कभी गए होंगे तो और बात है, नहीं तो आपको ये महात्मा एक भारत से गया 70 साल की आयु में, ये महात्मा बैठे हैं यहाँ, इनका नाम है अभयचरणार भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, 70 साल की उम्र में कलकत्ता से गए पानी के एक जहाज में, 70 साल में वृंदावन छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता है, और ये वृंदावन में रहते हुए पानी के एक जहाज में, वो भी कौन सा जहाज जो माल उठाता है, उसमें अमेरिका गए। 12 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर भगवत गीता और भागवत का एक आध्यात्मिक आंदोलन बर्पा कर दिया, ये आत्मा की शक्ति है, ये भगवत गीता का प्रमाण है, भगवान कैसे शक्ति से काम अपना करा लेता है, कितनी शक्ति में आदमी, इतना आदमी एक नहीं काम कर सकता है, लेकिन कितना बड़ा काम, इतना बड़ा काम किया कि भारत संस्कृति कितनी दुनिया के अंदर फैली हुई थी, दुनिया की तारीख बदल दी, दुनिया का इतिहास बदल दिया, दुनिया की हिस्ट्री बदल दी, आने आज से 500 साल बाद में हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन कभी कोई अफ्रीका के किसी देश के अंदर खुदाई करेगा तो अंदर से सीताराम लक्ष्मण का एक मंदिर मिलेगा, राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा, एक भगवत गीता मिलेगी अफ्रीकी भाषा में, कोई अमेरिका के किसी कोने के अंदर कहीं खुदाई करेगा तो एक मंदिर मिलेगा, अच्छा रशिया में खुदाई करेगा तो एक मंदिर मिलेगा, चाइना में देखेगा तो चाइनीज भाषा में गीता मिलेगी, और अरबिस्तान में देखा देगा तो अरबी भाषा में गीता मिलेगी। उस वक्त लिखने वाला इतिहास, तारीखदान उस वक्त का इतिहास लिखने वाला ये लिखेगा कि भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में फैली हुई थी, दुनिया के कोने कोने तक फैली हुई थी, क्योंकि ये संस्कृति भारत की संस्कृति है, जो भारत पहले भी तो पूरी दुनिया भारतवर्ष ही कहलाता था, इस दुनिया का नाम भारतवर्ष था, ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया था, यहां तो पांडवों के अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे, ये ऑस्ट्रेलिया इसका नाम था पहले, अस्त्र शस्त्र रखने का स्थान था, ये स्वास्तिक का निशान जर्मनी का है, ब्राह्मण सारे वहां जाके बसे थे, शर्मन से जर्मन हो गए, नाम बदल गए, तो ये पूरी देश पूरी दुनिया के अंदर भारत संस्कृति का पहलाव था, तो वो भारतीय भारत इसीलिए आज जाते हैं कहीं कहते हैं हमारा भारत देश बहुत बड़ा गरीब है, हमको दुनिया से बड़ी सहायता लेनी पड़ रही है, अरे भैया भारत इसलिए गरीब नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है, भारत इसलिए गरीब है कि हमने अपने असली धन को बुला दिया है। ये वैदिक साहित्य आपका धन है, भारत पूरे संसार का नेता रहा है, आध्यात्मिक रहेगा, और पूरे संसार का विकास भारत से होना है, लेकिन उस विकास की कुंजी जो है, उसकी चाबी जो है, उसकी जो असल में पूंजी है, वो ये सत्शास्त्र भगवत गीता है। इस एक शास्त्र के आपको चार श्लोक भी अगर आते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाकर लोगों को ये श्लोक दो, जो भगवत गीता देना सिखाती है, जो देता है वो देवता है, हम देने वाले रहे हैं। एक भी इतिहास में ऐसा बात दिन बताओ जब भारतवर्ष के लोग दुनिया के बाहर आक्रमण करके कुछ छीनने ले गए हो, कभी लूटने गए हो, नहीं मिलेगा आपको इतिहास में कभी भी कि भारत अपनी सीमाओं से बाहर कभी किसी दूसरे के ऊपर आक्रमण करके गया हो। बाहर के लोग यहां आए क्यों आए, और अर्गुन यहां क्यों आए, तुर्क यहां क्यों आए, मुगल यहां क्यों आए, अंग्रेज यहां क्यों आए, क्योंकि हम धनी थे, वो धनी होते तो हमारे पास क्यों आते, सुखी हम थे इसलिए वो यहां आए, सुख हमारे पास था, उनके पास कहां से आए, वो सब यहां आए क्योंकि हम धनी थे और हमारा ये आध्यात्मिक धन था। सुख कहां है, संतुष्टि कहां है, आत्मा में सुख और संतुष्टि है, बाहर की चीजों में सुख संतुष्टि नहीं है। परिपूर्णता आदमी अपने आप को महसूस करता है, कंटेंट महसूस करता है आध्यात्मिक तरह से, भौतिकता से आदमी कभी कंटेंट नहीं हो सकता, कभी कंटेंट नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा सुखी हो गया हूं, यह संभव नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से आदमी, तो ये असल में हमारा धन है। कहीं भी दुनिया के अंदर जाओ, हजारों लोग आपके आपके चरणों में बैठे, क्योंकि आप देने वाले बन जाओगे। देने वाला बड़ा होता है, महान होता है, भारत दुनिया को हमेशा देती रही है। ये महात्मा लोग बाहर जब गए तो बाहर के लोगों को कहा कि भैया आप तो बहुत, सब लोग भारत के ऊपर गए थे, विजय प्राप्त किया, वहां बहुत शासन भी किया, लेकिन एक चीज आप भारत में भूल के आ गए, हम आपको वो देने आए हैं। आप आए थे भारत में, आपने संस्कृति को बहुत उजाड़ा, यहां से धन माल लूटा, ही कोहनो हीरो भी तुम लोग लाग, यहां से कोहनो हीरो हमारा ले गए, क्या नहीं ले गए, जो जो हमारे यहां के म्यूजियम की सब चीजें हैं वो ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ी है, बहुत सुंदर कोणार्क मंदिर है समुद्र के किनारे में ओडिशा में, जिसमें सूर्य भगवान की मूर्ति चारों ओर से चुंबक से खड़ी होती थी, कहीं नीचे ना कुछ बना था ना ऊपर से टंगी हुई थी चुंबक से, और सूर्य की पहली किरण उस मूर्ति के ऊपर पड़ती थी, चुंबक इतना ताकत वाला था कि जहाज पानी में समुद्र में होता तो जहाज की मशीन जाम हो जाती थी, अंग्रेज का जहाज चला नहीं तो जाके देखा चुंबक उखाड़ के ले गया, मूर्ति ही ले गया यहां से। लेकिन महात्मा ने कहा अरे आप एक चीज भूल के आयो भैया, वो धन आपको हम देने आए हैं, आध्यात्मिक धन भारत का आप भूल के आए, भौतिकता की सब चीजें तो उठाकर उखाड़ के लेके आ गए, लेकिन आध्यात्मिक आपको नहीं मिली। तो बहुत बड़ा प्रयोग किया, बहुत बड़े महात्मा भारतवर्ष के हुए हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र के भी, बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे ज्योतिष शास्त्र के भी, और फिलॉसफी और सिद्धांत के बड़े बड़े वेदज्ञ थे। उन्होंने भारत की दशा को देखा अंग्रेज की राज्य में, और भारतवासियों के मानसिकता को पहचाना कि ये भारतवासी कई साल अंग्रेज गुलामी, पहले तो मुस्लिम शासन के नीचे रहने के बाद तो कायर बन गए, और अंग्रेज ने उसको भिखारी बना दिया, हर चीज बाहर की उनको अच्छी लगने लगी है, मेड इन यूरोप चाहिए, मेड इन जापान चाहिए, मेड इन जर्मनी चाहिए, स्वदेशी चीज को अच्छा नहीं समझते, विदेशी चीज को बहुत अच्छा समझते हैं, ये भारतीय मानसिकता नीचे गिर चुकी है। तो एक और प्रयोग करके देखते हैं, और वो प्रयोग ये करते हैं कि आध्यात्मिकता को भी भारत से ले जाके पाश्चात्य देश से वापस प्रचारित करके देखते हैं। ये भारतवासी जो सो गए हैं, अपने आध्यात्मिक धरोहर को भुला चुके हैं, इनको प्रायः जगाने का एक ही साधन है, और उन साधन का प्रयोग करके इस महात्मा को प्रेरणा दी कि आप अंग्रेजी भाषा जानते हो। ये प्रभुपाद जी महाराज सुभाष चंद्र बोस के कलीग थे, एक साल जूनियर थे, उसी कॉलेज में पढ़ते थे, स्कॉटिश कॉलेज में, और भारत स्वतंत्रता के एक उनके संगी और साथी थे। अंग्रेज उस जमाने में अंग्रेजी पढ़ते थे, लेकिन अंग्रेजी डिग्री नहीं ली थी, बहिष्कार कर दिया, कहा नहीं चाहिए अंग्रेज की डिग्री। तो गुरु महाराज ने इनको कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, कि आपको अंग्रेजी भाषा आती है अभय बाबू, आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो भारत संस्कृति का, इस वैदिक सनातन धर्म का, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम भक्ति का प्रचार करो। और इस 70 साल की आयु में इस आदमी ने ये बहुत बड़ा एडवेंचर किया, और उस एडवेंचर का एक बड़ा प्रयोग सफल हुआ कि जब पाश्चात्य देश में अमेरिका के नौजवान लोग भगवद गीता की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताने लगे और उन्होंने भारतीय संस्कृति को स्वीकार किया, भारतीय पहचान को अपनी पहचान समझा, धोती पहन के चोटी रख ली और तिलक लगा के, और भारत में जब वापस वो आए और उन्होंने भारत के गलियों में भगवान के नाम का कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भारतवासी जाग उठे, अरे अरे जी ये तो हमारे दादा घर में करते थे कीर्तन, ये तो हमारे घर में मामा करते थे, ये तो हमारे मंदिर में हुआ करता था, अरे कहां से आ गए, ये तो गोरे लोग कर रहे हैं, अरे इसका मतलब वो हमारी अपनी चीज है, तो हमारी अपनी चीज है, लेकिन मेड इन अमेरिका है इसलिए बहुत अच्छी लगी। और बहुत बड़ा प्रयोग सफल हुआ, इतना बड़ा प्रयोग सफल हुआ कि भारतवासी फिर दोबारा जाग उठे। वो प्रभुपाद जी यहां 10 साल प्रयास किया, एक भक्त बना मुश्किल से और एक किताब छपा, लेकिन जब उन लोगों के ऊपर भारत संस्कृति, उन्होंने शास्त्र केवल नहीं सिखाया है, प्रभुपाद का दूसरे महात्माओं और प्रभुपाद की शिक्षा में ये अंतर है, दूसरों ने आध्यात्मिक शिक्षा तो दी लेकिन संस्कृति नहीं दी, संस्कृति के बगैर शिक्षा खत्म हो जाएगी, इन्होंने उनको संस्कृति दी, खाना कैसे खाना है ये भी सिखाया कि एक हाथ से खाना खाया जाता है, खाना सीधे हाथ से खाना है, उल्टा हाथ नहीं लगाना है खाने को, खाना कैसे पकाना है ये सिखाया, और कैसे शुद्ध खाना बना के भगवान को भोग लगाना है ये सिखाया, धोती कैसे पहनी जाती है और साड़ी कैसे पहनी जाती है ये सिखाई, और गाय जो तुम खाते हो वो गाय भक्षण को गाय रक्षक बनाए, बोला गौशाला बनाओ, तो उन्होंने संस्कृति भारतीय उन लोगों को दी, आज वो लोग गाय गौशालाएं खोल के दुनिया के अंदर गाय की रक्षा कर रहे हैं, वो लोग शुद्ध शाकाहारी भगवान को भोग लगाकर भोजन जो है वो वितरण कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा ये काम कराया, तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग भारतीय संस्कृति का किया गया, बहुत बड़ा सफल रहा और भारतीय लोग दोबारा जागृत हुए। तो अब चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं संसार के अंदर एक भविष्यवाणी कर गए हैं, वो भविष्यवाणी ये है, दो बातें उन्होंने कही, एक तो कहा भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जिसका जन्म इस भारत वर्ष में हुआ है बड़ा भाग्यशाली है, क्यों भाग्यशाली है, क्योंकि आध्यात्मिकता उसके दरवाजे के ऊपर है, उसके खून के अंदर आध्यात्मिकता है, हमारे यहां किसी लोग को कहने की जरूरत नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता दी, उनको सबको पता है इस चीज का, पाश्चात्य देश के लोग तो ये भी नहीं जानते भगवद गीता और कृष्ण है कौन, लेकिन प्रभुपाद एक दिन कह रहे थे भारतवासी तो 3 फीट भगवान कृष्ण से दूर हैं, और पाश्चात्य देश के लोग भगवान श्री कृष्ण से 3000 मील दूर हो, लेकिन फिर प्रभुपाद ने मुड़ के देखा और कहा सुनो तुम 3000 मील दूर तो हो लेकिन तुम कृष्ण की तरफ कदम उठा रहे हो, और भारतवासी 3 फुट दूर होने के बाद भी वहां से दूर जा रहे हैं, इसलिए बताओ कि कौन लाभदायक, कौन गुड पोजिशन में, कौन हुई इन दी बेटर पोजिशन, जो 3 फुट पे है लेकिन भगवान की तरफ न जाके उल्टा जा रहा है, और जो 3000 फुट पे है मील पे है वो भगवान की तरफ आ जाए, बेटर पोजीशन में कौन, वो बेटर पोजीशन में, क्योंकि आ तो भगवान की तरफ रहा है ना, तो हमारा तो इतना निकट आध्यात्मिकता है, इसलिए भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, हम बड़े भाग्यशाली हैं, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, अपने जन्म को सार्थक करो, जन्म सार्थक करने का मतलब मानव जन्म के लक्ष्य को पहले समझ लेना चाहिए कि ये मनुष्य जन्म को बार बार मौज नहीं मिलती है, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, बहुत रेयर है, अनमोल जन्म है, कर पर उपकार, ये भारत का दूसरा महत्व, बहुत बड़ा उपकार करना है दूसरों का, कर पर उपकार, ये भारत की मान्यता है कि पर उपकार का आदेश है, और फिर कह दिया पृथ्वी ते आते यत्र नगर आती ग्राम सर्वत्र हो विमोय नाम प्रचार, जितना पृथ्वी के ऊपर गांव और नगर है, धरती के ऊपर जितने भी गांव है नगर है, उन सब में भगवान के नाम का प्रचार होगा, भगवान के मंत्र का जाप होगा, कीर्तन होगा, भगवद गीता का प्रचार होगा, ये तो भगवान की भविष्यवाणी है, तो दुनिया के कोने कोने में होना है, हमारे जीते जी हम देख रहे हैं कि दुनिया के हर मुल्क में तो कम से कम है, दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसमें नहीं है, चाइना के अंदर है तो रशिया के अंदर 40 केंद्र है, तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें भगवान के नाम का प्रचार, लेकिन हर गांव और शहर में जाने के लिए बहुत बड़ा अभी तक योगदान की आवश्यकता है, ये होगा तो सही लेकिन हम में से जो इसमें भाग लेगा वो यशस्वी बनेगा, जो इस कार्य में भाग लेगा वो यशस्वी बनेगा, और दूसरे का भला करेगा उसका भगवान भला करेगा, तो अपन ज्यादा समय आपका न लेकर भगवद गीता का ये संदेश है, ये भारत के बहुत बड़ा एक भारत संस्कृति का सबसे बहुमूल्य एक अनमोल मोस्ट अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर ऑन द प्लैनेट इज स्पोकन बाय द लोटस माउथ ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ, भगवान के मुखारविंद से कहा हुआ मोस्ट अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर ऑन द प्लैनेट है, इतना प्रमाणित भगवान के मुख से कहा हुआ शास्त्र ऐसा है, सब शास्त्रों का सार है, इसको अपने जीवन में अपना के अपना कल्याण कीजिए और सबका कल्याण कीजिए, देश का कल्याण कीजिए और विश्व का कल्याण कीजिए। इस संदेश के साथ हम अपने वाणी को यह विराम देते हैं। अगर आपके मन में जिज्ञासा जागती है कि भगवद गीता की शिक्षा को रेगुलर रूप से हमको समझना चाहिए कि इसके अंदर क्या है और हम अपना आध्यात्मिक विकास कैसे कर सकते हैं, तो हमारे मित्र आए हुए ये अमरीश हरि प्रभु बहुत आपके निकट में रहते हैं, और आपको उत्साह हो तो इसको हम विनती कर सकते हैं कि तो महीने में कभी एक बार आके ऐसे गोष्ठी हो, आपस में बैठ के चर्चा की जाए, तो ये वो सेवा करने के लिए तैयार करेंगे इनको कि आके ये भी सेवा करें, क्योंकि दुनिया के नगर ग्राउंड में एक नगर ये भी है, यहाँ भी आना हमारा धर्म है। और आप जैसे सज्जन पुरुष अगर इस बात को समझने में रखते हैं उल्लास और हर्ष और आपको इसमें रुचि है, तो फिर हम सेवा करने के लिए प्रयास करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो अमरीश हरि प्रभु को कहते हैं मदन लाल जी, हाँ प्रश्न,
आपके आश्रम कहाँ कहाँ पे है जी और क्या कार्य चलते था कि तुम जाना चाहिए या वहाँ?
एक छोटा सा किताब है क्या बैक टू गार्डन, उसके पीछे मेरे ख्याल में लिख ले, चार पांच सौ जगहों पे दुनिया पूरी में आश्रम है, 600 के करीब है अभी लेटेस्ट नौजवानों को मालूम है, पूरी दुनिया के अंदर तो आश्रम है। इधर ये निकट आपको पहले यहाँ बहादुरगढ़ में, हरियाणा में, फिर कुरुक्षेत्र में है, फिर चंडीगढ़ में है, लुधियाना में है, और यमुनानगर में है, दिल्ली में तो बहुत बड़ा विषय, तीन मंदिर है। वैसे एक तो बड़ा विशाल मंदिर है जो तो पूरी, उसका नाम ही है ग्लोरी ऑफ इंडिया, ग्लोरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट उसका नाम है, भारत की महानता, जिसके अंदर बहुत सुंदर भगवद गीता का चलचित्र के हिसाब से एक
म्यूजियम बने,
बड़ा सुंदर एक्सपो है देखने जैसा, कभी बच्चों को ले जाके दिखाना होना कि संडे का दिन सारा दिन देखने हैं, प्रचार भी वहाँ, प्रसाद भी वहाँ खाना है, दोपहर का भोजन भी वहाँ, सत्संग भी वहाँ, दर्शन भी वहाँ, तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, भव्य भव्य बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, वृंदावन में अपना बहुत बड़ा सुंदर मंदिर है, बॉम्बे में है तो फिर तो कहीं जहाँ जाएंगे वहाँ मिलेगा, अहमदाबाद में मिलेगा, तो जी जहाँ तो प्रतिदिन सुबह सत्संग भागवत के होता है, शाम को भगवद गीता का होता है, और ये प्रभु जी आपके निकट में यहाँ बैठे हैं, हर रविवार को 12 से 3 बजे तक सत्संग करते हैं भगवद गीता का बहादुरगढ़ में, और भोजन भंडारे के साथ समाप्त होता है, तो प्रभु जी अब आपसे 10 मिनट की बात करेंगे अगर आपके पास समय है तो। धन्यवाद, हरे कृष्ण।
क्या शुभ नाम आपका? राजेश जी ना, राजेश जैन जी, धन्यवाद। सुबह पार्क में मिले थे हमको, हम बैठ चलने के लिए, लेकिन वहाँ बैठे
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाक्या चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो देखिए आप लोगों की जो परिषद है, जैसे अभी 2 मिनट पहले मैं पता लगा भारतीय विकास परिषद, तो मैं सबसे पहले तो एक क्वेश्चन करूंगा, जैसे क्वेश्चन बड़ा अजीब है और उम्मीद करता हूँ आप लोग उत्तर देंगे। ओके, अच्छा अच्छा, परिषद के कम लोग, तो फिर भी आप लोग जुड़े तो हैं परिषद से, सबका विचार मेल खाता है, तो भारतीय शब्द का क्या अर्थ है? कभी आप में से किसी ने विचार किया? जिस देश में आप रहते हो उस देश को भारत कहते हैं और यहां के निवासी को भारतीय कहते हैं, तो कभी विचार शायद नहीं किया होगा। उत्तर भी मुझे ही देना पड़ेगा कि भारतीय शब्द का क्या अर्थ है। भा, भा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और रत शब्द का अर्थ होता है रत होना, भरत शब्द का अर्थ है ज्ञान में रत होना, इसको बोलते हैं भरत। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे ज्ञान रत व्यक्ति का अनुयायी बने तो उसको क्या कहते हैं? भारत। ठीक है, और जो ऐसी संस्कृति में विश्वास करे और इन विचारों के अनुसार जीना सीखे उसको क्या कहते हैं? भारतीय। ठीक है, और विकास का अर्थ है जो ऐसी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहे उसको विकास कहेंगे। परिषद का अर्थ है संगठन जो उसको आगे बढ़ाए। तो वास्तव में ये जो भारत नाम पड़ा है इस देश का, इसका कारण था कि आज से लाखों साल पहले भरत महाराज एक राजा यहां हुए। एक तो भरत महाराज भी पांडवों के वंश में थे, लेकिन एक भरत महाराज यहां दूसरे भी हुए जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आया है। तो वो भरत महाराज वास्तव में ऋषभ देव के पुत्र थे, उनके नाम पर हमारे देश का नामकरण हुआ। वो ज्ञानरथ थे, भाव अर्थात उनका ज्ञान क्या है अगर आप जानना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद को कभी पढ़िएगा। भागवत ऐसा शास्त्र है जो भारत में सब जगह प्रचलित है, प्रसिद्ध है। भागवत का पांचवां स्कंद आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उनका ज्ञान क्या था। उनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। वर्ष का अर्थ होता है खंड, टुकड़ा, जमीन का एक कोई टुकड़ा, उसको वर्ष बोलते हैं। भारत वर्ष ज्ञान में रत व्यक्ति के अनुयायियों के रहने का जमीन का हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? भारत वर्ष। और जो उस भारत वर्ष का विकास कर सके, ऐसा यदि कोई संगठन है तो उसको भारतीय विकास परिषद कहा जाएगा। तो वास्तव में अभी समस्या ये है कि ज्ञान क्या है, लोग इतना भी नहीं जानते। फिर ज्ञान प्राप्त करना, ये सब तो आगे की बात है। ज्ञान का मतलब लोग सोचते हैं भाई काखा का सीख लिया, खाना सोना रहना सहना, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन सीख लिया, हाउ टू एंजॉय विद दिस मेटल बॉडी, बस ये सीख लिया, दैट मीन्स ज्ञान हो गया, ठीक है ना। अगर बहुत बढ़िया तरीके से हम खा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, सो सकते हैं, खूब टीवी पिक्चर देख सकते हैं, दैट मीन्स हम बहुत ज्ञानी हैं। हमें भी फील होता है और लोग भी यही सोचते हैं बहुत सक्सेसफुल आदमी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप डेप्थ में जाकर के देखोगे तो ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? जानकारी। और ज्ञान शब्द वास्तव में वेद का हिंदी अर्थ है। और वेदों का कहना है कि ज्ञान का अर्थ है भगवान का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान क्यों प्रश्न उठता है? ईश्वर की जरूरत क्या है? हम क्यों इस ईश्वर के पचड़े में पड़े? तो इसके बारे में जॉन फाइबर नाम के एक प्रोफेसर हुए, वो लिखते हैं, आज कोई भी मनुष्य है, हम सब भी हैं, आप सब भी बैठे हो, 7 साल के अंदर हमारे शरीर में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता। उनका एक लिटरेचर है, अगर आप चाहो तो कहीं किसी लाइब्रेरी, एडवांस लाइब्रेरी से मिल भी सकता है, द ह्यूमन ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन में उन्होंने ये विचार दिया कि 7 वर्ष में मनुष्य के शरीर का 100% चेंज हो जाता है। एक छोटा सा परमाणु, एक कण भी वो नहीं होता जो 7 साल पहले आपकी बॉडी में था और 7 साल बाद आपकी बॉडी में रह जाए। तो मिस्टर फाइबर कहते हैं जब शरीर पूरी तरह चेंज हो जाता है तो आज से 20 साल पहले का अगर आपको फोटो दिखाया जाए और आपसे पूछा जाए ये कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये मैं हूं। या आप कुछ और कहेंगे, यही कहेंगे ना कि ये मैं हूं। सो हमारा क्वेश्चन ये है, जब अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक थ्योरी अगर 7 साल में आपकी बॉडी 100% चेंज हो चुकी है, तो फिर वो मैं क्या है जिसको आप कह रहे हैं ये मैं हूं? व्हाट इज कॉमन उसमें? वो मैं या वो कॉमन पॉइंट क्या है जो 20 साल पुराने शरीर में भी है और करंट बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है? आत्मा, ठीक है। सो दैट मींस कि आत्मा के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। ये जो बिजली जिसके कारण चस रही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन वो कहता है कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है मैं हजारों वर्षों से इस धरती पर ही हूं और मृत्यु का अर्थ केवल यह शरीर नष्ट होना है, मैं हजारों वर्ष बाद भी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह रहूंगा, मुझे यह विश्वास नहीं होता कि मैं खत्म हो जाऊंगा, बस इस शरीर के साथ दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक और मैथमेटिशियन हुए पाइथागोरस, शायद आप लोगों ने उनके नाम को सुना होगा। पाइथागोरस लिखते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को नहीं समझ पाया इसका अर्थ है कि उसने अपना जीवन गंवा दिया। ये एक ग्रीक फिलोसफर थे और भारत के अंदर तो कोई आश्चर्य ही नहीं है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने भी संत हुए सबका एक सुर में कहना था क्या कि भाई आप ये शरीर नहीं हो, इस शरीर से भिन्न आप एक आध्यात्मिक कण या आत्मा हो। सो क्वेश्चन ये राइज होता है जब सबका वही कहना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमेरिका के अंदर जो महात्मा गांधी की तरह से पूजित हैं एमर्सन थोरो। एमर्सन थोरो कहते हैं कि मैंने गीता को जब एक बार पढ़ा तो मुझे लगता है मैंने ऐसा स्नान किया, ऐसा मेरा मैल उतर गया जैसा पिछले 50 साल रोज साबुन तेल लगा करके नहीं उतरा। मेरे मन का ऐसा मैल धुल गया, मेरी आत्मा का ऐसा मैल धुल गया, मुझे पता लग गया मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों यहां संघर्ष कर रहा हूं। तो आप संसार के किसी भी कोने से पूरा मैप उठाकर कहीं के भी साइंस को ले लीजिए, सबने यही कहा। और दुनिया में हर कोने में सम्मान भी उन्हें ही मिला जिन्होंने ऐसे विचारों को महत्व दिया, चाहे वो उधर में जीसस हो, चाहे वो आपके हजरत मोहम्मद साहब हो, चाहे आपके गुरु नानक जी हो, चाहे भारत के बड़े बड़े संत हो। जिन्होंने आत्मा को महत्व दिया, जिन्होंने आत्मा के आधार पर जीवन जिया, उन्हें ही महत्व मिला। तो फिर ये क्या दुर्भाग्य है कि आज हमारी जो मॉडर्न कल्चर है वो आत्मा को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। कहने के लिए तो हम कह देते हैं हाँ जी आत्मा है शरीर है ये, लेकिन एक्चुअली आत्म कल्याण के लिए हम सुबह उठने से लेकर और सोने तक क्या करते हैं? इवन ये भी खाली बस एक फेथ वाला पॉइंट बन गया कि हाँ एक आत्मा जैसी चीज होती है, बाकी साइंटिफिकली या कोई अप्रोच इसको लेकर के कि भाई मैं आत्मा हूं, शरीर के लिए तो मैंने हजारों लाखों का इंतजाम कर लिया लेकिन ये तो शरीर के साथ ही फिनिश हो जाएगा, तो आत्मा के लिए मेरी क्या तैयारी है? कल को जब ये शरीर छूटेगा और आत्मा जब जाएगा यहां से निकल करके, जैसा कि जॉन फाइबर भी कहते हैं, अब जॉन फाइबर जैसे प्रभु जी ने बड़ा अच्छा बताया, अगर मेड इन अमेरिका लिखा है तो ठीक है जी, मेड इन चाइना लिखा है तो ठीक है, लेकिन मेड इन इंडिया है तो बेवकूफी है। अगर मैं यही कहूं कि गीता में कृष्ण कहते हैं तो कई लोग जो गीता पढ़ने का भी इसे टाइम आ गया क्या? ये तो जब हम बिल्कुल सड़े हुए हैं हो जाएंगे, जब किसी लायक नहीं रहेंगे तब किसी से कहेंगे जी गीता, वो भी कोई दे जाएगा तो हम तो नहीं मांगेंगे, हम तो टीवी का रिमोट मांगेंगे कि अब मेरे घुटनों में दर्द होने लग गया, अब खड़ा होकर के ऑन नहीं कर सकता, रिमोट वाला टीवी ला के देते यहीं से टू टू करके देखता रहा। खैर मेड इन इंडिया मीन्स गीता तो पहले से कह रही है, आज भगवान श्री कृष्ण को इस पृथ्वी से जाए हुए 5232 वर्ष एग्जैक्टली बीत चुके हैं और उन्होंने 89 वर्ष की आयु में ये ज्ञान अर्जुन को दिया। महाभारत युद्ध कृष्ण के जाने से ठीक 36 वर्ष पहले हुआ। तो ये सारी बातें हैं लेकिन उसको तो लोग ये सोचते ये तो सब ऐसे ही, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन आधुनिक जो विद्वान हुए, फिलोसॉफर्स हुए, जिनका नाम आज बहुत ऊंचे दर्जे पर लिया जा रहा है, उन्होंने भी स्वीकार किया कि आत्मा एक परम सत्य का अंश है, ये सब जगह स्वीकृत है। लेकिन फिर भी आप सब मेरी बात से पूरी तरह सहमत हो जाओगे कि आज जो माहौल है वो क्या है कि शरीर को सब कुछ मानो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड, खाओ पियो और ऐश करो, ये फिलॉसफी सब कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब इसी को एंजॉय कर रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन, घर घर में वही केबल टीवी और उसमें भी सड़े हुए चैनल देखना। प्रभुपाद जी, अभी जो प्रभुपाद जी के विषय में आपको प्रभु जी ने बताया, प्रभुपाद अपने भागवत के एक पर्पट में बताते हैं कि जब हम बच्चे थे, इनका जन्म सन 1896 में हुआ, तो इन्होंने बताया कि जब हम बच्चे थे तो हम देखते थे कि गांव के अंदर दिन भर लोग अपना कोई खेती करता था, किसी का व्यापार था व्यापार करता था, लेकिन शाम को जैसे आज आप लोग इकट्ठे हुए हो ऐसे सब लोग एक जगह इकट्ठे होते थे और गांव का कोई ब्राह्मण कोई ना कोई पुजारी वो या तो रामायण से राम जी की कथाएं सुनाता था या भागवत से कृष्ण जी की कथाएं सुनाता था और इस तरह से सबका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो होता था। वे लोग जब घर में जाकर सोते थे तो उन्हें सोते हुए भी सपने आते थे किसके, राम के कृष्ण के, क्यों, क्योंकि वो ये सब सुनकर के सोया करते थे। और आज अब वो जो देख रहे हैं वो पाप देखते हैं, आंख खुलते ही सबसे पहले टीवी ऑन, ठीक है ना, अगर अखबार सुबह सुबह ना मिले तो झगड़ा हो जाता है कि पेपर कहां पटक गया, ठीक है, क्या कोई कभी झगड़ता है कि गीता कहां रख दी, मेरे को पढ़नी थी, वो तो कहते जी मैं इस लायक नहीं हूं, दूर से ही हाथ जोड़ लेते, क्या मतलब मैं नालायक हूं, ये नहीं कहते, कहते मैं लायक नहीं हूं, लेकिन ये कहना चाहिए कि मैं नालायक हूं। तो इस स्थिति को सुधारा कैसे जाए, ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि बस इस तरह से शोक प्रकट करते रहोगे भाई पहले तो देखो ये था वो था आज सर्वनाश हो गया। इस्कॉन मूवमेंट मीन्स, हरे कृष्णा मूवमेंट मीन्स एक आशावादी व्यक्ति जिसका विश्वास है ये तो है, ये बुरी स्थिति है, आप सब भी जानते हो, हम आपको याद दिला रहे हैं, इन बातों को रियलाइज करा रहे हैं, इसको सुधारा कैसे जाए, हाउ टू चेंज इट, इसको करने के लिए ये हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना हुई। इस्कॉन मीन्स इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व थे जिन्होंने अकेले इस पथ पर चलने की तैयारी की। प्रभु जी जैसे बता रहे थे कि आत्मा का बल गीता इतना बढ़ा देती है, ये बिल्कुल सत्य है कि आत्मा का बल इतना बढ़ चुका था कि प्रभुपाद को कोई डर नहीं लगा। 40 रुपए इनकी जेब में थे, 2 जोड़ी धोती कुर्ते, मालवाहक जहाज जैसे अभी आपको बताया उसमें लेटे जा रहे हैं, जहाज में ही 2 बार हार्ट फेल हो गया तो जहाज का कैप्टन आके कहता स्वामी जी, उसको जैसे दया आई, आप वापस चलो, मैं वहीं आपके लिए कोई कमरा बनवा दूंगा, प्लीज आप मेरी बात मान जाओ, आप अमेरिका की ठंड 3 दिन भी नहीं सहन कर सकोगे, मतलब बर्फ गिरती, आपके साथ कोई नहीं है, कौन आपको संभालेगा, कैसे क्या होगा। तो श्री प्रभुपाद का उत्तर था कि श्री कृष्ण भगवान है, उनकी इच्छा को आप पूरा होने दीजिए। उन्हें इतना गहन विश्वास हो चुका था कि कृष्ण अगर मुझे वृंदावन धाम से निकालकर यहां ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? प्रभुपाद जी की एक पोयम है, अगर आप लोगों को अवसर मिले तो प्रभुपाद जी की आप ऑटोबायोग्राफी को पढ़िए, बायोग्राफी है, उसमें आपको वर्णन मिलेगा बहुत सुंदर, प्रभुपाद लीलामृत के नाम से। प्रभुपाद जी ने एक पोयम लिखी, जिस समय वे अमेरिका पहुंचते हैं तो उस समय कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो बिल्कुल व्यर्थ हूं और मुझे अपने में कोई योग्यता भी नहीं दिखती, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, अगर आप इस बूढ़े सन्यासी को वृंदावन धाम से खींचकर इस बिहड़ स्थान में लाए हैं तो होना हो आपको यहां कोई जरूरी काम है, नहीं तो आप मुझ जैसे अपने बूढ़े सन्यासी को क्यों यहां अमेरिका या इस बिहड़ स्थान में लेकर आते। तो मैंने जब इस पोएम को पढ़ा पहली बार तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि भाई पिछले लगभग 100 सालों में भारत से हजारों लोग अमेरिका गए, बहुत से साधु भी अमेरिका गए, और मैंने बहुत साधुओं को सुना, इनके इंटरव्यूज पढ़े सुने, क्योंकि शुरू से भगवान की कृपा से पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ा कि किसी ने यह कहा हो कि अमेरिका को बिहड़ स्थान। जहां तक मेरा अध्ययन है वो ये कहता है, ये पहला व्यक्ति है जिसने 100 सालों में ये कहा, पिछले 100 सालों में, कि इस बिहड़ स्थान में आप मेरे को ले आए। अमेरिका उनको क्या दिखा? बिहड़ स्थान। और वो कहां से गए थे? वृंदावन धाम से निकल गए। तो वास्तव में जिसके पास आध्यात्मिक धन होता है उसको ये भौतिक संसार का जो धन है, जो शक्ति है, वो कैसी दिखती है? बिहड़ के समान। चाणक्य पंडित जी आज से 2500 साल पहले अपनी चाणक्य नीति में लिख गए, क्या उनका बड़ा सुंदर श्लोक है, मात्रवत परदारेषु लोष्ट्रवत समकांचना। लोष्ट्रवत समकांचना का अर्थ है कि जो विद्वान व्यक्ति होता है उसको धन संपत्ति विशेषकर दूसरों का वो किस तरह से देखता है? कंकड़ पत्थर के समान, उसको उसमें कोई आकर्षण नहीं। तो जैसे आप रास्ते में चलते हो, बहुत से पत्थर पड़े, तो क्या कोई लालच होता है जी उठा के 2-4 जेब में डाल लो? नहीं होता, क्योंकि आपको लगता है ये किस काम का। इसी प्रकार जो विद्वान है वो दूसरे की धन संपत्ति को इस दृष्टि से देखता है। तो श्रील प्रभुपाद को देखिए, उन्होंने अमेरिका को क्या कहा? बिहड़। इससे पता चलता है वे एक विद्वान व्यक्ति हैं, चाणक्य की परिभाषा के अनुसार। प्रभुपाद जी को जब अमेरिका गए तो वहां पर कई भारतीय साधु पहले से थे, तो ये साधु सलाह देने आए, स्वामी जी ये नहीं चलेगा यहां, ये क्या आप चाय नहीं पीते, ये क्या, ये आप, हमने सुना है आप कहते हो ये नॉन वेज वगैरह ये सब गलत है, आप अमेरिका आ गए हो, ये भारत नहीं है जी, ये छोड़ो ये सब, आप ढील दो थोड़ा, आपने माला करो, ठीक है अपनी भक्ति करो, ये नियम नियम यहां नहीं चलते। प्रभुपाद जी इतने शुद्ध संत थे, आप सोचिए जिस व्यक्ति को 2 बार हार्ट फेल हो गया हो, जिसकी आयु 70 वर्ष को पार कर रही हो, जो अकेला हो, तब भी अमेरिका में अपना भोजन अपने हाथ से पकाते थे। उनके पास एक वो इस तरह का बर्तन था जिसमें 3-4 थे, उसी में पकाते थे, और कोई मजाल नहीं कि कभी उन्होंने चाय कॉफी बीड़े सिगरेट या कोई ऐसी चीज को छू लिया हो, ये कह करके भी आप ये यहां संभव नहीं। तो प्रभुपाद जी इतने शुद्ध संत बने रहे और उन्होंने गीता का उपदेश वहां शुरू किया। तो आप जानते हैं क्या हुआ, क्योंकि वे इतने अच्छी तरह से भक्ति सिखा रहे थे, परिणाम स्वरूप वहां के लोगों ने कहा कि भाई ये किस तरह से होगा, क्योंकि आप जानते हो विदेशी लोग बहुत पतित होते हैं, उनके लिए रूल रेगुलेशन को फॉलो करना इतना आसान नहीं है। तो प्रभुपाद जी एक बार टॉमकिंसन स्क्वेयर पार्क न्यूयॉर्क में एक बेंच पर बैठे थे, और वहां कोई सज्जन थे जिनसे उनकी थोड़ी मित्रता हो गई थी, 1 वर्ष लगभग समझ लीजिए सड़कों पर। तो उससे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आप देखेंगे जल्दी हम लोग यहां पर बड़ा मंदिर बनाएंगे, हम लोग जल्दी यहां पर गीता का बड़ा भारी प्रचार करेंगे। तो वो था तो मित्र, लेकिन कहते ना जिसका कोई नहीं होता उसके मित्र मित्र भी सब छोड़ के भाग जाते हैं, जिसके जेब मोटी है मित्र लोग भी उसी के पास बैठते हैं, जो देखते हैं कंगला है तो क्या मित्रता करनी, तो छोड़ो। तो उसने सोचा यार ये स्वामी जी 24 घंटे कहते हैं हम हमारा हमारा, तो वो प्रभुपाद जी से क्या कहता है, स्वामी जी आप हमेशा बोलते हो हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, अब हम क्यों कहते हो, आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, आप इसको समझते क्यों नहीं। प्रभुपाद बोले नहीं हम अकेले नहीं है, हम ही हैं, और आप अति शीघ्र देखेंगे कि यहां क्या होने जा रहा है, इसी पार्क में आप देखेंगे। तो वो घबरा गया कि भाई पता नहीं ये साधु आदमी कि क्या करते है? और कह रहा हम बहुत सारे हैं, मेरे को तो अकेला दिख रहा है। वो अपना उठ करके उधर चला गया। प्रभुपाद बहुत निराश हुए, उनके पास ये करताल थी जिसे आप ये देख रहे हो, उन्होंने अपनी करताल ली अकेले पार्क में बैठे और महामंत्र का कीर्तन प्रारंभ किया। यही अपना हरे कृष्णा इस तरह से अकेले। आपको विश्वास नहीं होगा, प्रभुपाद जी कोई म्यूजिशियन नहीं थे, प्रभुपाद जी कोई बहुत बड़े गायक नहीं थे कि भाई उन्होंने पहले कहीं उनकी सीडी वीसीडी निकलती हो। एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति, अभी भी हमारे पास उनकी जीवनी है जिसमें लिखा है, कई अंग्रेज कहते हैं कि मैं साइकिल चला रहा था पार्क के चारों तरफ, मुझे समझ नहीं आया ये आदमी क्या गा रहा है, ना कोई वहां बहुत जबरदस्त म्यूजिक बज रहा था, ना कोई माइक्रोफोन ही लगा था, लेकिन पता ही नहीं चला कि साइकिल कब मुड़ करके उसके सामने आके खड़ी हो गई और ऐसा लगा कि जैसे ये तो मेरे को अभी थोड़ी देर में अपने साथ ही ले जाएगा। मेरे हार्ट को वो टच कर रहा था पूरे जोर से उसका वॉइस। मैं नहीं जानता था ये हरे क्या है, ये कृष्ण क्या है, ये राम क्या है। आप सबने एक वो फिल्म देखी होगी ना, हरे राम हरे कृष्ण, तो आपने देखा ना उसमें कैसे कैसे पापी हैं। तो वास्तव में वो फिल्म बनी थी स्वामी प्रभुपाद के ऊपर। प्रभुपाद जी पहले ऐसे संत थे जो वहां गए, लोग हमेशा हमें क्या कहते हैं कि आप ये ऐसे यहां क्यों जाए, ये बिगड़ेल है, उनको जाके सिखाओ ना। प्रभुपाद ऐसे अकेले संत थे जिन्होंने अपने प्रचार कार्यक्रम को शुरू किया दुनिया के सबसे ज्यादा बिगड़ेल लोगों में। जो वृद्ध लोग हैं वे जानते होंगे कि हिप्पी जो मूवमेंट था वो क्या था। ये हिप्पी भारत में भी आए, 60-70 के दशक में भारत आते थे हिप्पी लोग, और जब ये वृंदावन जाते या नेपाल जाते थे तो जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वे कहते जी डर लगता था इनसे, ऐसा लगता था कहीं जेब ना काट लें, कहीं ये मार ना दें, क्योंकि वो राक्षस भेष बिल्कुल। प्रभुपाद जी अकेले उनके बीच में जाके बैठे और वहां उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया कीर्तन करना। और वो जो आप देखते हो उस फिल्म में सारे पापियों को, उनमें से प्रभुपाद ने हजारों को ऐसा शुद्ध भक्त बनाया, जिसमें से एक था स्टीव जिसका बाद में नाम हो गया सत्स्वरूप दास गोस्वामी। उसने 108 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की, एक भगवत गीता की व्याख्या करते पता नहीं कितने। तो श्रील प्रभुपाद जी जब भारत आते थे तो उन्हें भारतीयों को हमेशा एक ही शिक्षा देते थे, क्या कि आप लोग कृपा करके अपने देश को अगर सच्चे अर्थों में बचाना चाहते हो, अपने घरों को बचाना चाहते हो, तो कृपा करके इस भगवत गीता को स्वीकार कर लीजिए, यह आपका सच्चा धन है। लेकिन हम लोगों का यह दुर्भाग्य ही है कि हम लोगों को भी अब गीता में ऐसा विश्वास मिला। यहां पता नहीं कितने कितने पंथ बनते जा रहे हैं। मैं तो सच्ची बात कहता हूं, हो सकता है किसी को कड़वी लगे लेकिन यह सच्ची बात है। और परिणाम क्या होता जा रहा है कि लोग गीता से दूर हट रहे हैं। मैं अभी भी कभी किसी चर्च में जाता हूं तो वहां देखता हूं एक ही बात पर चर्चा चलती है, क्या बाइबल, दूसरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता और कोई इस सब्जेक्ट से हट नहीं सकता। किसी मस्जिद में चले जाइए क्या सब्जेक्ट मिलेगा आपको हमेशा, अल कुरान। आप चल करके किसी गुरुद्वारे में आ जाइए आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, क्या गुरु ग्रंथ साहिब। बहुत अच्छी बात है ये, मैं इससे खुश होता हूं। लेकिन अगर आप किसी मंदिर में चले जाओ क्या मिलेगा, वो पंडित जी वो लड़का नहीं होता कुछ कर थोड़ा, वो पंडित जी कह रहा चिंता मत करो आप जाके वो काली माई के ऊपर ये उपासना चढ़ा दो जी, आप वो देवी माई पे ये कर दो जी, वहां वो कर दो जी, क्योंकि ये कोई धर्म है। कहीं पर आप जाओगे कहीं पर ये हो रहा है जी, कहीं पर वो हो रहा है। अरे किताबों में बच्चों तक को हम पढ़ाते हैं कि हिंदू का शास्त्र है गीता रामायण, इसको कौन जानेगा, इसको कौन पढ़ाएगा। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम शुरुआत करेंगे, इसीलिए हम लोग आज जगह जगह केंद्र खोल रहे हैं और उसी दिशा में काम करते हुए आपके पड़ोस में ज्यादा दूर नहीं है बहादुरगढ़ में अब हमने अपना नया केंद्र प्रारंभ किया है। और यहां पर हमने एक छोटी गौशाला बना ली है और यहां पर हर रविवार को हम भगवद गीता को बहुत ही साइंटिफिक एंगल से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि खाली एक विश्वास श्रद्धा का मार्ग बन के रह जाए, बिल्कुल साइंटिफिकली ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस आर कॉर्डियली इनवाइटेड एंड आंसर्ड, इस बेसिस पे काम करते हुए गीता को पढ़ा रहे हैं और हर किसी को निमंत्रण दे रहे हैं। तो वहां पर आप लोगों को भी हम निमंत्रण देते हैं और हमारी इच्छा मुख्य रूप से ये है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसी एरिया में मासिक स्तर पर गीता पर एक सत्संग प्रारंभ किया जाए, कि गीता का एक सत्संग शुरू हो जो महीने में एक बार हो सके और हमें अवसर मिले यहां कि हम शुरू से लेकर और आखिर तक पूरी गीता आपको सिखा सके। अगर ऐसा कोई कार्यक्रम बन सकता है तो ये आप लोगों के लिए भी लाभदायक होगा। अभी वहां हमारा सत्संग था तो वहां भी मैं बता रहा था कि रोहतक का, जैसे लोगों ने बताया पहले नाम था रोहतासगढ़, रोहतास या रोहित वास्तव में हरिश्चंद्र जी के लड़के का नाम था और हरिश्चंद्र जी सत्य के पुजारी थे, भगवान राम के वंश में थे और उनके पूर्व जन्म की कथा से पता चलता है वास्तव में वे उन्होंने जन्माष्टमी की अनजाने में सेवा की थी कृष्ण की, इसीलिए उन्हें एक राजा के रूप में जन्म मिला। तो भगवान की तो कोई अनजाने में भी सेवा करता है तो उसको भी इतना फल मिलता है। तो हम तो चाहते हैं कि फिर अनजाने में क्यों की जाए, क्यों ना सब लोग जाने कि भगवान कौन है, भगवत गीता क्या है। भगवत का अर्थ है भगवान और गीता का अर्थ है गीत। अपना अपना गीत बहुत दिन गा लिया, सुन लिया, अब हो सके तो एक बार भगवान के गीत को गाइए और सुनिए, आप दुनिया के सब गीतों को भूल जाओगे। लास्ट में यही कहूंगा, आज सबके घर में टीवी सेट है, फ्रिज सेट है, सोफा सेट रखे हैं, होम सेट है, बहुत कुछ, बहुत सारे सेट हैं, और पर्सनली अपसेट है, कहीं भी चले जाइए, किसी से भी मिल लीजिए पूरी तरह से। तो हम ये नहीं कहते आप अपने जो सेट आपके उन सेटों को खराब कर दो, यही कहते हैं पर्सनली भी कैसे सेट हुआ जाए, इसके लिए आप कृष्ण भावनामृत के संदेश को जानिए। आप न केवल स्वयं सुखी होंगे, आपका बल ऐसा बढ़ेगा कि जो लोग आपसे मिलेंगे उन्हें भी ऐसा लगेगा कि गीता वाकई कुछ है, ये कुछ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नहीं, परिचय हम आपको देंगे। वास्तव में हमारे प्रभु जी मिडल ईस्ट में भी प्रचार करते हैं और अभी पाकिस्तान में भी प्रचार कर रहे हैं,